नमस्कार भारत, तारीख 24 अक्टूबर, दिन शनिवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। 300 से भी ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हरिकेन पेट्रिशिया मेक्सिको के समुद्र तट से जा टकराया। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है।
We are currently evacuating our coastal coast, our coastal area.
पाकिस्तान के जेकब आबाद में मुहर्रम के जुलूस में धमाका, 22 लोगों की मौत।
40 के करीब जख्मी हो गए हैं, जिन्हें जेकब आबाद अस्पताल पहुंचाया गया। वहां पर जो सहूलियात थी वो मौजूद नहीं थी, डॉक्टर भी दस्तयाब नहीं थे, जिस पर लोग काफी नाराज हुए हैं।
बताएंगे कि कैसी है फिल्म शानदार और हफ्ते भर के दौरान खेल की दुनिया में क्या कुछ हुआ, लेकिन पहले ठहरेंगे और सुनेंगे बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। विश्व के सबसे विनाशकारी तूफान में से एक पेट्रिशिया मैक्सिको के समुद्री तट से जा टकराया है। अभी जान माल के नुकसान की जानकारी नहीं मिल पाई है। 325 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले इस हरिकेन से बड़े पैमाने पर तबाही की आशंका जताई जा रही है। तूफान से 400,000 लोगों के प्रभावित होने का खतरा है। नाइजीरिया में दो अलग अलग हमलों में 42 लोग मारे गए हैं और 100 से ज्यादा घायल हो गए हैं। उत्तर पूर्वी नाइजीरिया के योला में एक नवनिर्मित मस्जिद में हुए बम धमाके में 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि इससे पहले मेडुगरी में हुए एक आत्मघाती हमले में 15 लोगों की मौत हो गई। दोनों धमाके तब हुए जब लोग जुमे की नमाज अता करने जमा हुए थे। पाकिस्तान के दक्षिणी शहर जैकाबाद में एक शिया मुहर्रम जुलूस पर हुए आत्मघाती हमले में 22 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में दर्जनों लोग घायल भी हुए। इससे पहले गुरुवार को बलूचिस्तान प्रांत में एक शिया मस्जिद पर हुए आत्मघाती हमले में 10 लोग मारे गए थे। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा है कि रूस, सऊदी अरब और तुर्की के विदेश मंत्रियों के साथ सीरिया को लेकर उनकी सकारात्मक बातचीत हुई है और भविष्य में सीरिया संकट को सहमति से सुलझाने के आसार बढ़ गए हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोफ ने कहा कि सीरिया की सरकार और उसके विरोधियों के बीच बातचीत शुरू कराने के प्रयासों में तेजी लाना जरूरी है। जहां तक सीरिया संकट की बात है, तो हम सभी की साझा कोशिश है कि सीरिया संकट को सुलझाने के लिए राजनीतिक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए जो जून 2012 में हुए जिनेवा अधिसूचना के मुताबिक हो। ये थे रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोफ के शब्द, जो कह रहे थे कि सीरिया में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही बातचीत में शामिल करना होगा। हालांकि बीबीसी को मिली जानकारी के मुताबिक सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के भविष्य को लेकर रूस और अमेरिका के बीच अब भी गहरे मतभेद कायम हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी विदेश मंत्री एस्टन कार्टर ने कहा है कि इराक में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर और अमरीकी हमले हो सकते हैं। गुरुवार को इराक और अमरीका की संयुक्त फौजों ने आईएस के ठिकानों पर हमला कर 70 बंधकों को छुड़ाने का दावा किया था। पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में अलगाववादी गुटों ने अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल चैरिटी संस्था मेडिसिन सेंस फ्रॉन्टियर्स यानी डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर को इलाके में काम रोकने को कहा है। संस्था ने कहा कि उन्हें इसकी कोई वजह नहीं बताई गई। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जैसा कि अभी अभी आपने समाचारों में सुना, दुनिया के सबसे बड़े विनाशकारी तूफानों में से एक हरिकेन पेट्रिशिया मैक्सिको के समुद्री तट से जा टकराया है। इससे बड़े पैमाने पर तबाही की आशंका जताई जा रही है। सरकार प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने में लगी है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए प्रभात पांडे से।
325 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाला हरिकेन पेट्रिशिया आखिर मैक्सिको पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी रफ्तार और बढ़कर 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इसकी वजह से 400,000 लोगों के प्रभावित होने की आशंका है। सरकार प्रभावित इलाकों से लोगों को तेजी से सुरक्षित जगह पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मैक्सिको के आपदा प्रबंधन से जुड़े एक अधिकारी रॉबर्टो डोंडिक ने बताया।
We are currently evacuating our coastal coast, our coastal area, and
हम अपने समुद्री इलाकों को खाली कराने का काम कर रहे हैं। हम इस तबाही से निपटने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर विश्व की सभी बड़ी शक्तियां एक राय कायम करें, तभी इस तरह की तबाही से बचा जा सकता है। मुझे इस वक्त इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मैक्सिको के आपदा प्रबंधन अधिकारी रॉबर्टो डोंडिक के शब्द। वहीं प्रभावित इलाकों में फंसे कई पर्यटक भी वापस अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अपना हनीमून मनाने आई एक महिला ट्रेसी शिलिम ने कहा,
We've been told to stay in our rooms at the moment, waiting for coaches. They're evacuating floor by floor, so it's just.
हमें होटल के अपने कमरे में रुकने को कहा गया है। अधिकारी एक एक करके लोगों को निकाल रहे हैं। ऐसे में हमारे पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। हम तो फिर भी किस्मत वाले हैं कि हमें बचाने के प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन प्रभावित इलाकों में फंसे लाखों स्थानीय लोगों का क्या? आशंका है कि इसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर बाढ़ और भूस्खलन हो सकता है, जिससे बड़ी तबाही हो सकती है। इस तूफान की तुलना साल 2013 में फिलीपींस में आए तूफान हाइएन से की जा रही है, जिसमें 6,300 लोग मारे गए थे।
विनाशकारी हरिकेन पेट्रिशिया मैक्सिको से टकराया। रुख पाकिस्तान का करते हैं। पाकिस्तान के जेकबाबाद शहर में कल शिया मुस्लिम समुदाय के मुहर्रम के जुलूस में हुए धमाके में 22 लोगों की मौत हो गई है। इसे आत्मघाती हमला बताया जा रहा है। किसी भी गुट ने अभी तक हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पाकिस्तान में एक सुन्नी कट्टरपंथी गुट ने कथित तौर पर आशुरा के दौरान हमलों की धमकी दी थी। शिया समुदाय के लिए महत्वपूर्ण आशुरा की छुट्टी पर यह हुआ दूसरा धमाका है। इससे पहले गुरुवार को बलूचिस्तान प्रांत में एक मस्जिद पर हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 10 लोग मारे गए थे। और जानकारी के लिए देर रात मैंने बात की कराची में BBC संवाददाता रियाज सुहेल से।
जसिंता शहर है जेकाबाद, उसका मोहल्ला है लाशारी मोहल्ला। वो जब ये जुलूस वहां से गुजर रहा था तो उस वक्त ये धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में अब तक की इतलाह के मुताबिक कोई 22 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 40 के करीब जख्मी हो गए हैं, जिन्हें जेकाबाद अस्पताल पहुंचाया गया। वहां पर जो सहूलियात थी वो मौजूद नहीं थी, डॉक्टर भी दस्तियाब नहीं थे, जिस पर लोग काफी नाराज हुए हैं और उन्होंने हंगामा राई भी की। उसी दौरान जो थोड़ा फायरिंग के वाकयात भी पेश आए और लोगों ने उन लाशों समेत जो डिप्टी कमिश्नर के घर के बाहर धरना भी दिया है।
लेकिन ये जो मुहर्रम का जुलूस जब निकलता है तो इस समय बड़ी जो सुरक्षा बंदोबस्त थे वहाँ के बड़े तगड़े थे, उसके बावजूद इस तरह का अटैक हुआ।
जी, इस पाकिस्तान के बड़े शहर हैं जहाँ पे बड़े मातमी जुलूस निकाले जाते हैं, उन पर इस किस्म के धमाके होते रहते हैं। इस बार भी तमाम अटेंशन जो है ना बड़े शहरों में थी, कराची, लाहौर, पिशावर और क्वेटा पर, जहाँ पर है ना बड़े पैमाने पे पुलिस रेंजर्स तैनात थी। मगर इस मरतबा गुज़िश्ता एक हफ्ते में ये दूसरा वाकया पेश आया है और जेकबाबाद से ही करीब जो भागनाड़ी का बलूचिस्तान का इलाका था वहाँ पर 2 रोज पहले भी एक इसी तरह से धमाका हुआ था। इससे ये महसूस होता है कि जो शिद्दत पसंद है उन्होंने अपना टारगेट इस मरतबा छोटे छोटे इलाकों को करके रखा हुआ है।
इस वाकये के पीछे, इस अटैक के पीछे कौन से लोग या कौन सी तंजीम शामिल हो सकती हैं?
जी, अभी तक तो किसी तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। माजी में जब भी इस किस्म के जो वाकयात होते हैं उसमें लश्कर जंगवी या तहरीक तालिबान जो है उसकी जिम्मेदारी उठाते रहते हैं। और पिछले चंद सालों से सिंध का ये जो शुमाली इलाका है, नादरन सिंध है, इसमें नजर आ रहा है कि शिद्दत पसंदी के वाकयात बढ़ रहे हैं। तो पहले गुज़िश्ता साल भी जेकबाद के करीबी शहर शिकारपुर में जो है इसी तरह इमाम बारगाह में धमाका हुआ था, जिसमें 15 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। उससे पहले एक शिया लीडर थे जो इलेक्शन में इनके इंतखाबी मुहिम के दौरान उन पर हमला किया गया था। तो इस मरतबा ये नजर आ रहा है कि शुमाली सिंध जो सूफीज्म के हवाले से और बर्दाश्त के हवाले से शोहरत रखता है, उसमें भी ये शिद्दत पसंदी अब जड़ें पकड़ रही है। जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो पाकिस्तान में जो तंजीमें उनके खिलाफ पहले से क्रैकडाउन जारी है, मगर मुहर्रम की आमद के मौके पर खुसूसी तौर पर इस टारगेटेड ऑपरेशन का फोकस इस ग्रैंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ किया गया था जो सेक्टेरियन वायलेंस में मुलविस हैं, और इस हवाले से कराची समेत कई इलाकों से बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई थी। हो सकता है कि एक यही वजह हो कि इन बड़े शहरों में तो ये कार्रवाई नहीं हो सकी और उसका जो डायरेक्शन है छोटे इलाकों की तरफ कर दिया गया।
बीबीसी संवाददाता रियाज सुहेल बता रहे थे पाकिस्तान के जैकबाबाद में मुहर्रम के जुलूस में धमाके में 22 लोग मारे गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ब्रिटेन दौरे को दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से स्वर्णिम दौर कहा जा रहा है। जिनपिंग करीब 10 साल में ब्रिटेन का दौरा करने वाले चीन के पहले राष्ट्रपति हैं। उनके दौरे के दौरान चीन और ब्रिटेन के बीच कई समझौते हुए। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने इसे लेकर किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर हर्ष पंत से संपर्क साधा और पूछा चीनी राष्ट्रपति के दौरे से दोनों देशों के संबंधों में कितना बदलाव आएगा।
कोई लॉन्ग टर्म बदलाव या दूरगामी बदलाव आएगा कि नहीं आएगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस समय जो विदेश नीति है वो इकोनॉमिक्स और ट्रेड पर फोकस्ड है, और इसके लिए डेविड कैमरून की जो सरकार पिछले 5 साल से थी और जब ये सत्ता में आए थे उस समय से इमर्जिंग इकोनॉमीज की ओर उनका फोकस रहा है। तो इसमें इमर्जिंग इकोनॉमीज में चाइना एक अहम भूमिका में है और रहेगा आने वाले समय में। ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी इस समय चाइना को एक बहुत इम्पोर्टेंट एसेट मान रही है जिससे कि वो जो इकोनॉमिक लेवरेज है वो उसको यूज कर पाए चाइना की और अपने लिए एक नया रोल निर्धारित कर पाए, जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो बदलती नजर आ रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ पावर शिफ्ट हो रही है, उस समय चाइना का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। जो ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी है वो उस रोल को किस तरह से यूज कर पाएगी, खासकर जो इकोनॉमिक फोकस है उसके लिए, इसके चलते ये जो रिलेशनशिप है बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। और कैमरून जो कैमरून सरकार ने डेविड कैमरून खुद ने इसलिए चाइना को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है।
हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चीनी राष्ट्रपति के ब्रिटेन दौरे के दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे से क्या कुछ हासिल किया।
दोनों को अलग अलग किस्म के फायदे हुए हैं। ब्रिटेन को जो फायदा हुआ है वो ये हुआ है कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ब्रिटेन में आ रहा है। ब्रिटेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है ब्रिटिश कैमरून सरकार का, उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट आएगा, चाइनीज इन्वेस्टमेंट आएगा, और जो चाइनीज पैसा है, जो चीनी आर्थिक मजबूती है वो ब्रिटेन की तरफ आएगी, ये उम्मीद की जा रही है इन समझौतों से। तो ब्रिटेन को दूसरी तरह का फायदा हुआ है, और चीन को जो फायदा हुआ है वो ये फायदा हुआ है कि चीन जब ब्रिटेन जो कि अमरीका का सबसे एक क्लोज एलाय माना जाता है, जब वो उठ के ये घोषणा करता है कि चीन का जो रोल है वो ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी में बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है, तो उससे एक स्ट्रेटेजिक फायदा चीन को हुआ है, जबकि उसके रिश्ते अमेरिका के साथ बहुत मजबूत इस समय नजर नहीं आ रहे।
मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जल्दी ही ब्रिटेन का दौरा करने वाले हैं। भारत और ब्रिटेन पुराने साझेदार हैं। मोदी की यात्रा के ठीक पहले शी जिनपिंग का ब्रिटेन जाना और अहम समझौते ब्रिटेन के साथ करना, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि भारत और चीन केवल पड़ोसी नहीं है, कई मामलों में प्रतिद्वंदी भी हैं।
भारत और चीन की जो ब्रिटेन के प्रति समझ है और जो ब्रिटेन के प्रति रुझान है वो अलग अलग कारणों से है। चीन के संबंध जो ब्रिटेन के साथ थे वो कैमरन की ही सरकार के द्वारा जब कैमरन दलाई लामा से मिले थे उसके बाद बहुत नीचे चले गए थे, काफी उथल पुथल रही थी इन संबंधों में। तो अब कैमरन उनके जो चांसलर हैं जॉर्ज ऑसबॉर्न ये कोशिश कर रहे हैं कि आर्थिक मुद्दों को फोकस में रख के चीन के साथ जो रिलेशनशिप है उसको थोड़ा सा स्मूथ किया जाए, उसको एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री दी जाए। भारत और ब्रिटेन के संबंध बहुत पुराने हैं। मैं जो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो होता है इन संबंधों में वो इंडियन डायस्पोरा का है, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है जो ब्रिटेन और भारत का है, उसका चीन मुकाबला नहीं कर सकता है। तो चीन के जो संबंध है वो आर्थिक है, उतना जितना चीन ब्रिटेन में इन्वेस्ट कर सकता है इस समय वो भारत नहीं कर सकता है। तो दोनों के अपनी अपनी मजबूतियां हैं इस संबंध में और दोनों उसको लेवरेज करने की कोशिश करेंगे।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ब्रिटेन दौरे का विश्लेषण कर रहे थे किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर हर्ष पंत। और अब रुख भारत का करते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में दलित बच्चों की हत्या और सोनीपत में एक नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर विपक्षी दलों ने राज्य और केंद्र सरकारों पर निशाना साधा है। इस मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह के विवादित बयान को लेकर बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। दूसरी ओर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी के नेताओं को नसीहत दी कि वो अपना बयान देते समय सावधानी बरतें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का दावा है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है। एक रिपोर्ट संदीप राय से।
हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में हुए 15 साल के किशोर की मौत के मामले में उसके परिजनों ने पुलिस पर हिरासत में हत्या के आरोप लगाए हैं। पुलिस के मुताबिक इस मामले में 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उधर राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसे आत्महत्या का मामला बताया है।
थाने में शिकायत लेकर के एक परिवार गया है, शिकायत जब गया है तो उस समय दूसरे को बुला करके उनका फैसला हो गया है और फैसला होने के बाद फिर वो वापस घर चले गए हैं। रात्रि को सुसाइड होता है, सुसाइड का पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी अनऑफिशियली तो जानकारी मिली लेकिन ऑफिशियली उसकी रिपोर्ट आएगी। लॉर्ड एंड स्थिति ठीक है, शांति बहाल है। इंडिविजुअल घटनाओं को इस प्रकार का जातीय लपेट में लेंगे तो ये अच्छा नहीं है।
खट्टर मामले को तूल नहीं देने की अपील कर रहे हैं। वहीं विरोधी दलों ने इस घटना और इसके पहले फरीदाबाद में 2 दलित बच्चों की हत्या के मामले को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों को लेकर गंभीर नहीं है।
पुलिस के पहरे में 4 लोगों को जिंदा जला दिया जाए, इससे साफ संकेत मिलता है कि बीजेपी दलितों के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। और ये जो वहाँ पर घटना घटी है और अभी मुझे मालूम हुआ है कि हरियाणा में ही गोहाना में एक दलित की हत्या कर दी गई।
फरीदाबाद की घटना को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह के बयान को भी विरोधी दलों ने भारतीय जनता पार्टी पर हमले का हथियार बना लिया है। फरीदाबाद मामले पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में वीके सिंह ने कहा था कि अगर कोई कुत्ते को पत्थर मार दे तो इसके लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। बाद में वीके सिंह ने अपने बयान पर सफाई दी लेकिन विपक्षी पार्टियां उनके बयान को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा,
कुत्तों को पत्थर फेंका जाए तो इससे प्रधानमंत्री का दोष नहीं है, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए।
विरोधी ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी भी वीके सिंह के बयान को लेकर सफाई मांग रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि वीके सिंह का बयान उनकी सामंती मानसिकता को दिखाता है। उधर सहयोगियों और विरोधियों के वार झेल रही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्टी नेताओं को तोल मोल कर बोलने की नसीहत दी है।
हम यह कहकर नहीं बच सकते कि इसकी गलत व्याख्या हुई है, हमको स्वयं हम सबको स्वयं सावधानी इस बात की बरतनी पड़ेगी ताकि उसकी गलत व्याख्या करने की गुंजाइश न हो।
राजनाथ सिंह साथी नेताओं के बयान से पार्टी को हुए नुकसान की भरपाई की कोशिश में हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या उनकी नसीहत भारतीय जनता पार्टी को विवादों के घेरे से बाहर निकाल पाएगी। संदीप राय, BBC दिल्ली।
BBC इंडिया बोल।
दिल्ली का नया नारा है कार फ्री डे। शुरुआत के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साइकिल चलाई। बीते महीने से गुड़गांव भी हर मंगलवार को मना रहा है कार फ्री डे। मकसद है लोगों को सार्वजनिक परिवहन की ओर ले जाना। क्या ये सिर्फ एक शुरुआत है या एक दिन की कोशिश बन जाएगी आदत? कितना कम होगा प्रदूषण? इंडिया बोल में इस शनिवार इसी मुद्दे पर होगी बात। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुफ्त फोन करें 1800-102-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
और अब कार्यक्रम में अखबार के पन्ने पलट लेते हैं। प्रभात मौजूद है, प्रभात क्या कह रहे हैं आज के अखबार?
जी मोहनलाल जी, आज के सारे अखबारों में एक चीज मैं देख पा रहा हूँ कि टाइमिंग जो चीज होती है वो क्या कमाल होती है। कि एक तरफ तो हरियाणा की जो मनोहर लाल खट्टर सरकार है वो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दे रही है पेपरों में, बने घने काम एबे एक ए साल कथनी करनी एक ढाल, अपनी तारीफ कर रही है। और नीचे जो है हरियाणा में तमाम जो पिछले 2-3 दिनों में दलितों को लेकर जो घटनाएं हुई हैं वो खबरें हैं और हरियाणा सरकार पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो है। तो ये इस तरह से
विरोधाभास
है। और हरियाणा की घटनाओं को लेकर जो वीके सिंह ने और उसके बाद किरण रिजिजू ने जो उत्तर भारतीयों को लेकर बयान दिए थे उस पर जो है गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जो फटकार लगाई है उन्हें, वो अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है। हिंदुस्तान टाइम्स कहता है मिनिस्टर्स अंडर फायर, राजनाथ टेल्स देम टू वॉच देयर वर्ड्स।
और जनसत्ता की जो हेडलाइन है वो मुझे बड़ी पसंद आई, जुबान संभाल के।
जी, जनसत्ता ने जुबान संभाल के बात की है। उसी तरह से दैनिक भास्कर ने हेडलाइन दी है बड़बोले मंत्रियों नेताओं को गृह मंत्री की फटकार। और अमर उजाला की हेडलाइन है इसी खबर पर, बेतुके बोल पर वीके सिंह को राजनाथ की नसीहत। इसके अलावा लंबे समय बाद करीब 50 दिन के अंतराल के बाद साहित्य अकादमी ने जो अपनी चुप्पी तोड़ी है और एम कलबुर्गी की हत्या की निंदा की है उस खबर को भी प्रमुखता दी गई है। अमर उजाला ने खबर छापी है, साहित्य अकादमी ने चुप्पी तोड़ी, कहा सम्मान वापस लें लेखक, और साथ ही कलबुर्गी की हत्या की निंदा भी की है।
यहीं पर मैं एक कार्टून पढ़ना चाहूँगा, ये जनसत्ता का कार्टून है, ये मुनव्वर राणा से संबंधित है, इरफान का कार्टून है। मोदी जी कहेंगे तो मैं उनका जूता भी उठा लूँगा, मुनव्वर राणा और जूता पहना हुआ है इन्होंने। ये कहते हैं मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, वो तो मेरे बड़े भाई की तरह, और अभी हाल ही में उन्होंने कहा था कि मैं अपना जो सम्मान है वो लौटा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात पांडे। और अब हम बात करेंगे कल जो यानी कि जो शुक्रवार को फिल्म रिलीज़ हुई शानदार, शाहिद कपूर और आलिया भट्ट की, कैसी है फिल्म, सुनते हैं राखी शर्मा और फिल्म समीक्षक अर्नब बनर्जी से।
फेस्टिवल्स के शानदार वीक में इस हफ्ते फिल्म आई है शानदार, स्टारिंग शाहिद कपूर एंड आलिया भट्ट। शानदार फिल्म देखकर आ चुके हैं हमारे फिल्म क्रिटिक अर्नब बनर्जी। अर्नब, नाम तो शानदार रख दिया फिल्म का, नाम सिर्फ शानदार रखने से फिल्म शानदार हो गई है?
राखी, किसी भी फिल्म का जो हीरो होता है असली, हम मैंने कई बार कहा है पहले भी, उसकी राइटिंग होती है, यानी स्क्रीन प्ले या स्क्रिप्ट जिस तरह की होती है उस हिसाब से फिल्म बनती है। ऑफ कोर्स उसमें प्रोडक्शन वैल्यूज होती है और अच्छे एक्टर्स या अच्छा डायरेक्टर हो तो उसमें चार चांद लग जाते हैं, लेकिन पहले स्क्रिप्ट या पहले एक स्टोरी या एक राइटिंग, जैसे इसमें डायलॉग भी आ जाता है, स्क्रीन प्ले भी आ जाता है। शानदार एक ब्लैक कॉमेडी की कोशिश की गई है, जहाँ पे दो परिवार है, एक परिवार जिसमें सुषमा सेठ हेड है और उनका बेटा है पंकज कपूर, उसकी बीवी है निकी वालिया, पंकज कपूर की दो बेटियां हैं सना कपूर और आलिया भट्ट। इनका परिवार बिखरा हुआ है इसलिए क्योंकि इनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, लेकिन झूठी शान में जीते हैं। उनको एक तरकीब सूझती है कि अगर किसी बड़े घर में शादी करते हैं तो दोबारा से हमारे पास पैसे आ जाएंगे और हम रुतबा जो है हमारा वो बरकरार रहेगा। ये कहानी अच्छी हो सकती थी और इसमें कॉमेडी के बहुत सारे चांसेस थे, बहुत स्कोप था अगर अच्छी राइटिंग होती। अच्छे कलाकार हैं, शाहिद कपूर हैं, आलिया भट्ट बहुत नेचुरल हैं, सुषमा सेठ हैं और पंकज कपूर तो हमें पता ही है कि कितने मंझे हुए कलाकार हैं, लेकिन फिल्म में पता नहीं क्यों एक जगह भी हंसी नहीं आती है। विकास बहल के पास शायद कुछ करने को नहीं था, अगर पुअर स्क्रिप्ट होगी उसमें वो जान कितना भी डालेंगे उसमें वो बात नहीं बनेगी, फिल्म बहुत फीकी रह गई है।
और अब उन खबरों की बात करते हैं जिन पर रहेगी आज हमारी नजर।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकपुरा का दौरा करेंगे। इसी गांव में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान की घटना के बाद तनाव है, ये तनाव पंजाब के कई हिस्सों में भी फैल गया है। इसके अलावा हमारी नज़र पाकिस्तान पर भी रहेगी, जहां मुहर्रम के मौके पर हाई अलर्ट है। कल जेकाबाद शहर में शिया मुस्लिम समुदाय के मुहर्रम के जुलूस में हुए धमाके में 22 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा मैक्सिको में आए सबसे खतरनाक माने जाने वाले तूफान पेट्रिशिया से क्या फ़र्क पड़ता है, इस पर भी हमारी नज़र होगी। ये तूफान करीब 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। इसके अलावा न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में निहत्ते संदिग्ध अपराधियों पर बढ़ते पुलिस हमलों को रोकने की मांग के लिए एक रैली निकाली जाएगी।
और अब आपको बताते हैं कि इस हफ्ते खेल की दुनिया में क्या कुछ हुआ, आदेश कुमार गुप्त से।
खेल और खिलाड़ी के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत क्रिकेट से। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मौजूदा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज का पांचवां और आखिरी मैच कल मुंबई में खेला जाएगा। फिलहाल दोनों टीमें 2-2 से बराबरी पर हैं, जबकि इससे पहले 3 2020 मैचों की सीरीज दक्षिण अफ्रीका ने 2-0 से अपने नाम की। वो तो भारत पर एक दिवसीय सीरीज में भी हार के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन चेन्नई में खेले गए पिछले मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका पर 35 रनों की दमदार जीत हासिल की। सबसे बड़ी बात कि महेंद्र सिंह धोनी ने पिछले मैच में बल्लेबाजों के क्रम से अधिक छेड़छाड़ नहीं की। विराट कोहली नंबर 3, अजिंक्य रहाणे नंबर 4, सुरेश रैना नंबर 5 और खुद धोनी नंबर 6 पर उतरे। आखिरकार विराट कोहली बड़ी पारी खेलने में कामयाब रहे और उन्होंने अपने वनडे करियर का 23वां शतक जमाते हुए 138 रन बनाए। इससे पहले उन्होंने इसी साल जनवरी में विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ 107 रनों की शतकीय पारी खेली। 13 मैचों बाद उनके बल्ले से शतक निकला। सुरेश रैना ने भी 53 रन बनाए, लेकिन शिखर धवन और रोहित शर्मा अच्छी शुरुआत नहीं दे पा रहे हैं। रोहित शर्मा तो फिर भी पहले मैच में 150 और तीसरे मैच में 65 रन बनाने में कामयाब रहे, लेकिन शिखर धवन का बल्ला तो पूरी तरह खामोश है। कुछ यही हाल दक्षिण अफ्रीका के हाशिम आमला और डेविड मिलर का है। ये दोनों फॉर्म में नहीं है। ऊपर से जेपी ड्यूमिनी और तेज गेंदबाज मोरकल भी फिट नहीं है। ऐसे में कल भारत को कमर कसकर मैदान में उतरना चाहिए और दक्षिण अफ्रीका की इस हालत का फायदा भी उठाना चाहिए। दूसरी तरफ इस सीरीज में कुछ विवाद भी जुड़ गए हैं। कल मैच में पाकिस्तान के अंपायर अलीम डार नहीं होंगे तो पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम और शोएब अख्तर भी कमेंट्री टीम का हिस्सा नहीं होंगे। इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मानते हैं क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन।
मुझे लग रहा है ये बड़ी अफसोस की बात है। जिस तरह से कटक में हमने देखा था जो क्राउड का रिएक्शन था, ये बिल्कुल हमें शोभा नहीं देता है, क्योंकि भारत जो है क्रिकेट का अब गढ़ है, ये एल डोराडो है। पूरा विश्व ये मानता है कि यहाँ पर पैसा ही नहीं, प्रेमी भी यहाँ पर सबसे ज्यादा है, और वो हमें बताना चाहिए हमारा कैरेक्टर क्या है। और जहाँ तक मुंबई का सवाल है, बड़ा अफसोस है मुझे कि यहाँ पर अलीम डार को वापस ICC ने बुला लिया और शोएब अख्तर और वसीम अकरम ने ये डिसीजन लिया है कि वो यहाँ आके कॉमेंट्री नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि ये एक शर्मनाक बात है और ऐसा बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए।
दरअसल ये मामला तब उछला जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान पिछले दिनों मुंबई में BCCI के अध्यक्ष शशांक मनोहर से भारत पाक क्रिकेट संबंधों के शुरू करने को लेकर बातचीत करने के लिए मुंबई गए। खैर, जो हुआ सही नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल तो भारत के लिए एक दिवसीय सीरीज दांव पर है। उधर दुबई में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां कल खेल के दूसरे दिन पाकिस्तान की पहली पारी 378 रनों पर समाप्त हुई। इसके बाद इंग्लैंड ने स्टंप के समय तक कप्तान अलिस्टियर कुक के 65 और जो रूट के नाबाद 76 रन की मदद से 3 विकेट खोकर 182 रन बना लिए थे। वहीं कोलंबो में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन कल श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 76 रन बनाए। इससे पहले वेस्ट इंडीज की पहली पारी 163 रनों पर ढेर हो गई और श्रीलंका को पहली पारी के आधार पर 37 रनों की बढ़त मिली। अब श्रीलंका के पास कुल 113 रनों की बढ़त है और उसके 8 विकेट बाकी हैं। और अब बात बैडमिंटन की। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता हासिल भारत की साइना नेहवाल कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता हासिल थाईलैंड की रथचानोक इंतानोन से 21-9, 21-15 से हार कर बाहर हो गई। जबकि इससे पहले डेनमार्क ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पीवी सिंधु पहले ही दौर में हार कर बाहर हो गई, तो दूसरे दौर में तो जैसे भारतीय खिलाड़ियों के बाहर होने का तांता ही लग गया। दूसरे दौर में पी कश्यप अपनी फिटनेस बरकरार नहीं रख सके और इंग्लैंड के राजीव आसिफ के खिलाफ तीसरे गेम में हट गए। उनके अलावा HS प्रणय हांगकांग के लॉग एंगस से 21-15, 21-10 से हार गए। अजय जयराम भी चीन के तियान हाउवेई से 21-18, 21-8 से हारे। महिला युगल वर्ग में भी भारत की स्टार जोड़ी ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा नीदरलैंड्स की इफजी मुस्किन्स और सेलेना पीक की जोड़ी से 21-15, 21-18 से हार गई। खेल और खिलाड़ी में आज बस इतना ही।
और इससे पहले कि कार्यक्रम में आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
BBC समाचार। विश्व के सबसे विनाशकारी तूफान में से एक पेट्रिशिया मेक्सिको के समुद्री तट से जा टकराया है, हालांकि अभी जानमाल के नुकसान की जानकारी नहीं मिल पाई है। नाइजीरिया में 2 अलग अलग हमलों में 42 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हो गए हैं। पाकिस्तान के दक्षिणी शहर जैकाबाद में एक शिया मुहर्रम जुलूस पर हुए आत्मघाती हमले में 22 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा है कि रूस, सऊदी अरब और तुर्की के विदेश मंत्रियों के साथ सीरिया को लेकर उनकी सकारात्मक बातचीत हुई है। अमरीकी विदेश मंत्री एस्टन कार्टर ने कहा है कि इराक में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर और अमरीकी हमले हो सकते हैं। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। एक घंटे बाद यानी कि भारतीय समय के मुताबिक 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होने वाली है। मोहनलाल शर्मा को राजेश चौहान के साथ विदा दें, नमस्कार।